ओम शांति। 11473 की वाणी है। वाणी का टाइटल है परिवर्तन। इस वाणी में बाबा ने परिवर्तन की परिभाषा, संपूर्ण परिवर्तन और परिवर्तन के लिए खास जो मुख्य निमित्त महावीर महारथी आत्माएं हैं उनसे कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की है और परिवर्तन की विधि भी बताई है। तो इसमें से 7 पॉइंट निकाले हैं। पहला पॉइंट है समय, दूसरा पॉइंट है स्पीड परिवर्तन की, तीसरा है समय की घड़ी, चौथा है संपूर्ण परिवर्तन की परिभाषा, पांचवा पॉइंट है संगठन, छठा पॉइंट है धर्म, धर्म युद्ध का समय, और सातवां पॉइंट है प्रोग्राम और प्रोग्रेस। तो पहला पॉइंट समय के आधार पर बाबा ने उस वाणी में बताया कि वर्तमान समय परिवर्तन का समय है और जो मुख्य महावीर आधार मूर्त है, महारथी है, उनके आधार से ही परिवर्तन होने वाला है। और बाबा ने कहा ये समय जो है, इस समय उन आत्माओं को ऐसा अनुभव भी हो रहा है कि मनसा वाचा कर्मणा में सभी रूप से अंदर में परिवर्तन होता जा रहा है। तो अंदर में जो परिवर्तन होता जा रहा है ये निशानी है चढ़ती कला की। तो बाबा ने कहा समय तो परिवर्तन होता है, द्वापर में भी होता है, लेकिन वो है गिरती कला वाला, और अभी का जो परिवर्तन है वो है उड़ती कला वाला, चढ़ती कला वाला, बाबा ने कहा। और भी बाबा ने कहा स्पीड में, दूसरा बाबा ने कहा जो मुख्य आधार मूर्त आत्माएं हैं उनके परिवर्तन की स्पीड क्या है। बाबा ने कहा अभी जो स्पीड है वो थोड़ी थोड़ी स्पीड है, तो सृष्टि का परिवर्तन या हालातें भी कहो तो थोड़ी थोड़ी परिवर्तन हो रही है, जब उनका स्पीड बढ़ जाएगा तो संपूर्ण परिवर्तन भी हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट है समय की घड़ी। बाप दादा ने उसमें कहा कि जो मुख्य आत्माएं हैं यज्ञ की, महारथी, महावीर, वो आत्माएं बाबा ने कहा कि जैसे कि समय की घड़ी है, स्वयं समय की घड़ी है। जैसे कि समय घड़ी जो रहती है समय को स्पष्ट दिखाती है, तो ये मुख्य महारथी आत्माएं जो रहेंगी उनके हिसाब से परिवर्तन का समय नजदीक दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा क्या ऐसा अनुभव करते हो, क्या ये स्टेज बनी है या अभी भी। तो बाबा ने उसमें एक बात और बताई कि अगर स्वयं के संपूर्ण परिवर्तन के लिए अभी समय लगा रहे हैं तो उस विश्व के परिवर्तन में भी समय अवश्य लगेगा। फिर तीस आगे की पॉइंट है उसमें जो बाबा ने कही कि संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन की परिभाषा बाबा ने उसमें बताई कि हम जब पुरुषार्थ करते हैं तो कोई ना कोई मूल संस्कार रहता है हमारा, तो हम कहते पुरुषार्थी तो बहुत अच्छा है, बड़े अच्छा पुरुषार्थ करता है, लेकिन ये एक संस्कार है ना, इसके पुरुषार्थ में रुकावट आ जाता है आगे बढ़ने में। तो बाबा ने कहा ये जो मूल संस्कार है इन मूल संस्कारों की चेकिंग करके उसे बदलना है। तो ऐसा बदलना है, महारथियों से ज्यादा अपेक्षा बाबा ने उसमें रखी। बाबा ने कहा महावर्तियों महारथियों का तो परिवर्तन भी महान होना चाहिए, अंश मात्र में भी वो मूल संस्कार उसमें नजर ना आए, जमीन आसमान का, रात दिन का अंतर दिखाई दिए, उसी का गायन है लकी सितारे। तो बाबा ने कहा ये जो मूल संस्कार है अगर अभी है, बदला नहीं है, तो पास में भी परसेंटेज होंगी, संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, और संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्ण विश्व का परिवर्तन कराएगा। निमित्त आधार मूर्तियां इसके लिए निमित्त है, ऐसे बाबा ने उसमें आगे कहा। बाबा ने कहा इसके लिए चेकिंग करनी है, इसके लिए चेकिंग करनी है। और आगे का पॉइंट है उसमें संगठन, परिवर्तन के लिए संगठन का महत्व भी बाबा ने बताया कि साल में, उस समय बाबा ने बोला मुहानी में कि साल में भी ऐसा संगठन होना चाहिए, यहाँ पे भी हमारा संगठन होता है, तो संगठन परिवर्तन का आधार है, उसमें चेक करना है स्नेह, सहयोग, संपर्क, इसमें किस रीति से परिवर्तन आता गया। और आगे ये जो परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन है, उसका प्रत्यक्ष फल कब दिखाई देगा और उसकी आवश्यकता कब है सृष्टि चक्र में, वो बात बाबा ने स्पष्ट की। बाबा ने कहा प्रत्यक्षता के लिए ये संपूर्ण परिवर्तन बहुत आवश्यक है, प्रत्यक्षता के समय पे धर्म और धारणा दोनों का प्रैक्टिकल स्वरूप वो प्रूफ के रूप में सामने प्रत्यक्ष होगा। लेकिन उसमें बाबा ने कहा एक चीज ऐड करनी है, अभी ज्ञान मुहूर्त और गुण मुहूर्त तो बन गए हैं, लेकिन उसमें सेकंड में शांत करा सको, ये भाषण के साथ साथ वो भी अवस्था होनी चाहिए। तो बाबा कहते वाणी से सिद्ध नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो अवस्था भी बनानी है, तब प्रैक्टिकल फील्ड में सक्सेसफुल होंगे धर्म युद्ध के समय पे। और लास्ट की पॉइंट है प्रोग्राम और प्रोग्रेस। तो बाबा ने कहा ये परिवर्तन जो चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, परिभाषा बाबा ने बताई, उसके लिए विधि भी लास्ट में बाबा ने बताई कि अपने पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न कोई ना कोई प्रोग्राम बनाना है, या आपस में मिलकर अनुभवों की लेन देन करनी है, और ये दोनों का बैलेंस भी रखना है। तो ऐसी ये बाबा की 11/4/1973 की वाणी है, परिवर्तन टाइटल है। 7 पॉइंट इसमें है कि समय के बारे में बाबा ने बताया, पहले तो समय कौन सा चल रहा है, क्यों परिवर्तन का समय चल रहा है, तो आधार मुहूर्त कौन है। फिर बाबा ने आगे दूसरे पॉइंट में बताया कि जैसे कि स्पीड क्या है, तो उस हिसाब से सृष्टि का परिवर्तन क्या आप आधार हो, तो आपकी अभी की स्टेज चेक करो। फिर बाबा ने आगे बताया कि पूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन क्या है। फिर बाबा ने उसमें आगे बताया कि संगठन की आवश्यकता क्या है। और फिर बाबा ने बताया कि ये परिवर्तन जो है वो धर्म युद्ध के समय पे प्रत्यक्षता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए विधि भी बताई, प्रोग्राम और प्रोग्रेस। ओम शांति।
ओम शांति। आज ही के दिन 73 में बाप दादा ने मुरली चलाई थी, 25/5/73। तो मुरली का जो टाइटल था भविष्य प्लान, भविष्य प्लान सेवा के बारे में बाबा ने गाइडेंस दिए थे कि जैसे स्टेज पर सेवा करते हैं, लेकिन एक थोड़ी हद की सेवा हो जाती है, इसलिए बेहद की सेवा में जाने के लिए अपने को ही स्टेज बना दो, अपनी स्थिति की स्टेज से सेवा करो, और ऐसे स्पीच दो कैसे रूहानी स्पीच, अपने कर्मेंद्रियों द्वारा ही दूसरों को मतलब सीखने को मिले, परिवर्तन करने को मिले। तो ये मुरली है, तो इसमें बाबा ने जैसे समय कम है तो और सेवा बहुत करनी है, अभी तक अंश मात्र आत्माओं को ही संदेश दे पाए हैं, तो अभी बेहद की सेवा में संदेश देने के लिए कैसी रूहानी स्टेज हो, इस पर 7 पॉइंट है आज के मुरली से। पहला है प्लान। प्लान कोई भी सेवा करते हैं तो प्लान करते हैं कि कैसे मीटिंग करते हैं ना कि ऐसी एक सेवा करनी है तो उसके लिए स्टेज चाहिए, माइक चाहिए, स्पीकर चाहिए, किसको बुलाना है, फिर निमंत्रण कार्ड देना है, किसको नहीं बुलाना है वो भी तो ये सब ख्याल रखा जाता है, तो प्लानिंग करते हैं। तो बाबा ने जैसे प्लानिंग के लिए जैसी रूहानी प्लानिंग है तो इसके लिए कुछ 2 बातें कही, और इसके पहले बाबा ने कहा कि जैसे आत्माओं को ज्ञानियों का परिचय दे रहे, संदेश तो दे रहे, लेकिन साथ साथ प्रकृति को भी पावन करना है, इसके बिना भी विश्व कल्याण नहीं हो सकता है, तो ये दोनों जरूरी है। और इसके लिए जो 2 बातें कही थी कि साक्षात बाप समान बन जाओ, रूहानी सर्विस के लिए बाप साक्षात बाप समान, और दूसरा है साक्षी और साक्षीपन, साक्षात्कार मूर्त, साक्षी और साक्षात्कार मूर्त, ये 2 चीजें अगर है और इसको प्लान में लाते हैं, ये इस प्लान से सेवा करते हैं तो विश्व कल्याण का कार्य थोड़े समय में हो सकता है, जैसे 60 टाइम है तो 60 प्लान के लिए 2 बातें। तो ये पहली पॉइंट थी प्लान। फिर दूसरा है स्टेज, जैसे स्टेज पर भी हम देखते हैं किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, पहले तो चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, पर्दे चाहिए, स्लोगन चाहिए, लाइट चाहिए, माइक चाहिए, कैंडल लाइटिंग का स्टैंड चाहिए, हर एक का नेम प्लेट, और पानी भी चाहिए, गुलदस्ता भी चाहिए और स्पीच देने के लिए पोडियम चाहिए, सुनने वाले भी, श्रोता वक्ता बैकग्राउंड एक अट्रैक्शन वाला हो, कुछ माइक भी है ना, खराबी नहीं हो, नहीं तो फिर सुनने में भी प्रॉब्लम। हाँ, साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा हो, ये तो फिर वो फिर कंप्लेंट आती है कि ऐसा आवाज हुआ वैसा। तो बाबा ने अपनी स्थिति को स्टेज कैसे बनाया, बाबा ने कुछ बातें कही है। तो स्थिति की स्टेज के लिए जैसे वो लोग भी तूफान नहीं आए, मजबूत हो इसलिए बनाते, तो हमारी स्थिति एकदम अचल अडोल हो, एक रस हो, और जैसी स्थिति जैसा समय जैसी स्थिति जैसे स्थान वैसा अपने को एक सेकंड में चेंज कर दो, तो उस अनुसार हम अपनी स्टेज को तैयार कर सकते हैं। तो समय और स्थान के हिसाब से, तो ये हो गया स्टेज। और दूसरा, और स्टेज में भी वो वाइटनेस का ध्यान रखा जाता है, सफेद पर्दे लगाते हैं ना, और उसका भी ध्यान रखा, तो कोई भी दाग नहीं हो, सफेदी हो, तो इससे भी अट्रैक्शन होता है। फिर दूसरा है रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच। तीसरा पॉइंट है रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच। तो स्पीच बाबा ने कहा कि अपने जो कर्मेंद्रियों द्वारा ही स्पीच देना है, जैसे गायन है नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, हृदय कमल, पद कमल, तो एक कर्मेंद्रियों द्वारा ही दूसरों को देवता ही स्वरूप का अनुभव हो। तो उसमें भी बाबा ने कहा कि जैसे मस्तक है, मस्तक द्वारा अपने स्वरूपों का अनुभव हो। स्वरूप कौन से है? पांच स्वरूपों का अनुभव माना दूसरों को हो, अनादि आदि मध्य और ब्राह्मण फरिश्ता, ये पांच स्वरूपों का अनुभव हो जाए। और नैन द्वारा नजर से निहाल करो, और जो भी आत्मा है उनके दृष्टि वृत्ति कृति स्मृति सब बदल जाए परिवर्तन हो जाए। तो ये नैनों द्वारा, फिर होठों द्वारा बाबा ने कहा कि रूहानी मुस्कुराहट, तो रूहानी मुस्कुराहट से अविनाशी खुशी का अनुभव कराओ। और बाबा ने कहा कि संपूर्ण अपने चेहरे द्वारा अपने वर्तमान समय की पोजीशन है और जो भविष्य की पोजीशन है, तो इसका साक्षात्कार कराओ। तो इस प्रकार रूहानी ये अपने संपूर्ण कर्मेंद्रियों द्वारा, चेहरे द्वारा, चलन द्वारा बाबा ने कहा कि ये स्पीच आप दे सकते हैं। इसके लिए बाबा ने अनेक मुरलियों में बोला कि चलता फिरता क्या बन जाओ, म्यूजियम, चलती फिरती लाइब्रेरी बन जाओ, तो एकदम ऑटोमेटिक सेवा होती रहेगी। तो ये स्पीच था। चौथी पॉइंट थी जैसे लाइट चाहिए, स्टेज पर लाइट चाहिए, तो लाइट भी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टिमटिमाती नहीं होनी चाहिए, एक रस लाइट हो। तो बाबा ने कहा कि ये हमारी स्थिति भी उस समय डबल लाइट हो, डबल लाइट अर्थात एक तो हल्कापन और दूसरा नहीं भारीपन। भारीपन अगर है स्टेज पर कोई तो भारी माना मोटा उसको ही देखते हैं लोग, स्पीच को भूल जाते हैं। तो ये हमारे इसमें बोझ नहीं हो, हमारी स्थिति में कोई बोझ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बोझ की तरफ ही देखते हैं। जैसे स्टेज में मोटा आदमी है तो उसको ही ज्यादा देखेंगे। इस बीच बाबा ने बोला है मुरली में, तो ये भारीपन हो, लाइटनेस हो। फिर पांचवी पॉइंट है कि माइक भी ऐसा हो पावरफुल जिससे माइट निकलती रहे, तो उसकी जो माइक की जो आवाज हो वो बुलंद आवाज हो, दूर तक भी फैलना चाहिए, जो पीछे वाला भी हो आराम से सुन सके ऐसा माइक हो, तो माइक नैनों से और संकल्पों से सेवा कर सके। तो इस प्रकार जैसे दिव्य दृष्टि और दिव्य नेत्र मिला है उससे सेवा कर सके माइक। और फिर सिक्स पॉइंट है स्लोगन भी लगाते हैं स्टेज पर। तो बाबा ने मुख्य दो स्लोगन दिए थे कि मैं निमित्त आत्मा हूँ, विश्व कल्याण के कार्य के लिए बाप दादा द्वारा निमित्त आत्मा हूँ, और दूसरा है महादानी और वरदानी। जैसे आज का क्या है, आज का वरदान है, जैसे जो भी संबंध संपर्क में आए उन्हें गुणों की द्वारा शक्तियों द्वारा ज्ञान गुण शक्तियों द्वारा एटो में महादान मिलता जाए, माना योग का योग दान माना एक सहयोग हो गया, तो ये सहयोग मिलता रहे, तो ये महादान दो स्लोगन बाबा ने बोला था। और फिर था सातवा ना सातवा पॉइंट स्टेटस की कुर्सी पर स्थित रहो, जैसे चेयर भी होती है तो कोई ना पद प्रतिष्ठा दिखाई देती है कि कोई एक विशेष आत्मा है, वैसे ही सम्मान की सीट पर एकदम बैठे रहना है। हाँ, जैसे भक्ति मार्ग में शंकराचार्य अपनी सीट लाते हैं, चांदी का सिंहासन लेकर चलते हैं, उस प्रकार अपना अपने भी सम्मान की सीट स्टेटस की सीट एकदम अच्छी चाहिए। तो इस प्रकार ये सात बातें बाबा ने मुरली में बोली थी आज से 46 साल पहले, और अभी अभी वर्तमान समय अनेक साधन हो तो वर्तमान समय इतनी सेवा के साधन आ चुके हैं, तो अभी सोचने की बात है कि अभी सेवा कितनी करनी है हमें, तो ये रूहानी स्पीच द्वारा ही हम विशेष सेवा कर सकते हैं। पहली पॉइंट थी प्लान, पहले प्लान तैयार करना है बुद्धि में, तो प्लान के लिए दो बातें, साक्षात बाप बनना है साक्षी, फिर दूसरा है साक्षी और साक्षात्कार मूर्त एक पॉइंट होगी, और दूसरी है साक्षात बाप। हाँ रूहानी स्पीच, हाँ दूसरा स्टेज स्थिति का स्टेज, और रूहानी स्पीच, हाँ जो कर्मेंद्रियों द्वारा स्पीच देना है, और लाइट डबल लाइट स्थिति चाहिए, और माइक पे पावरफुल चाहिए जो माइट फैले, और हाँ स्लोगन दो स्लोगन दिए, और स्टेटस सातवीं पॉइंट स्टेटस। अच्छा ओम शांति।
ओम शांति। कल हमको 8 मई 73 से पॉइंट मिला था कि सर्वोच्च स्वामान, सर्वोच्च स्वामान में फर्स्ट पॉइंट था कि सबसे बड़ा से बड़ा स्वामान कौन सा है, सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था दाता की निशानी, एंड थर्ड पॉइंट था नशा और नम्रता का बैलेंस। जी नशा और नम्रता का बैलेंस, एंड फोर्थ पॉइंट था खजानों की स्मृति, और फाइव शक्तियों का प्रयोग, एंड सिक्स पॉइंट था त्याग की परिभाषा, और सेवन पॉइंट था क्या बोलते हैं साधन। तो फर्स्ट पॉइंट साधन, और फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने बोला बड़े ते बड़ा सामान, बड़े ते बड़ा सामान यह है कि विश्व का रचता बाप के भी तुम मालिक हो, बाप भी तुम्हारी गुलाम बनकर सेवा करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट था कि दाता की स्मृति, बाबा ने कहा कि तुमको सिर्फ एक बाप से लेना है और सभी आत्माओं को देना है, और जिसको देते हो उससे लेने की इच्छा नहीं रखना है, क्योंकि जो भी तुमने लिया है बाप से लिया है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। और बाबा ने कहा कि सर्व और जो भी आत्माओं से लेने की इच्छा रखते हो उसमें सदाकाल की प्राप्ति नहीं होती, अल्पकाल की होती, इसलिए आत्माओं से लेने की इच्छा नहीं रखना। और थर्ड पॉइंट है नशा और नम्रता का बैलेंस। बाबा ने कहा कि जैसे ऊंचते ऊंच बाप आकर और हम बच्चों की गुलाम बनकर सेवा करते हैं, तो ऐसे बाप को नशा भी है लेकिन नम्रता भी है। बाबा ने कहा नशा जब होता है तो उसमें नम्रता भूल जाती है, इसलिए ऊंचते ऊंच नशा के साथ नम्रता भी होना चाहिए, तभी सेवा होगी। और आगे बाबा ने कहा खजानों की स्मृति, बाबा ने कहा कि बड़े ते बड़ा खजाना है, बड़े ते बड़ा खजाना है बाप, और बाप मिल गया मतलब खजानों की चाबी मिल गई। जैसे कोई खजाने की चाबी मिल जाती है तो व्यक्ति समझता है अब तो चाबी मिल गई मतलब सब कुछ मिल गया। ऐसे ही बड़े ते बड़ा खजाना बाप है। और खजानों में बाबा ने कहा कि शक्तियों, शक्तियों का खजाना है। ऐसे अष्ट शक्तियों की यदि एक एक शक्ति की यदि डिटेल में चर्चा करें तो एक एक शक्तियां एक एक खजाना है। ऐसे ही बाबा ने कहा समय का खजाना है, पवित्रता का खजाना है। और फिफ्थ पॉइंट है शक्तियों का प्रयोग। बाबा ने कहा कि शक्तियों का प्रयोग अपने प्रति न करके और दूसरों के प्रति करें, तभी हम और शक्तिशाली बनेंगे। अब दूसरों के प्रति शक्ति का प्रयोग लगाने से हम और ही संपन्न होते जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है त्याग। त्याग के विषय में बाबा ने कहा कि जब तक स्वयं त्याग नहीं करेंगे तब तक दूसरों का भाग नहीं बनेगा। और हमारे निमित्त यदि कोई दूसरों का भाग नहीं बन रहा है मतलब जो जैसे का तैसा है, मतलब हमारे त्याग में कमी है। इसलिए स्वयं के त्याग को बढ़ाना है। जब तक स्वयं का त्याग नहीं बढ़ाएंगे तब तक औरों को हम शक्तिशाली नहीं बना सकेंगे। और सेवन पॉइंट है साधन। बाबा ने कहा कि पहले साधन नहीं थे लेकिन साधना बहुत ज्यादा थी। अभी साधन बहुत हैं लेकिन साधना कम हो गई है। इसलिए बाबा ने कहा कि साधनों का प्रयोग जो है कम करना है और साधना ज्यादा करना है, ऐसे ही फॉलो फादर करना है।
ओम शांति। मुरली की डेट है 20/11/1972। इसमें टाइटल है इसका स्थिति का आईना सर्विस। इस मुरली में बाबा बता रहे हैं कि हमारी स्थिति को बाबा आईना में देख रहे हैं और वो आईना है सर्विस का। इसमें बाबा ने बताया है कि जैसे हम पुरुषार्थी ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति है, वही स्थिति क्या जिन्हों की हमने सर्विस की है उन्हों की बनी है। इसमें बाबा ने 7 प्रश्न पूछे हैं हमारी स्थिति के लिए। वही 7 प्रश्न जो है 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट है सदा विजयी, दूसरा पॉइंट है सर्व अधिकार, तीसरा पॉइंट है पुरुषार्थ की सिद्धि, और चौथा पॉइंट है सर्विस, पांचवा पॉइंट है विशेष गुण, और छठवां पॉइंट है शक्ति अवतार, और सातवां पॉइंट है झंडा लहराओ। तो पहला पॉइंट है सदा विजयी। तो बाबा ने पूछा है कि अपने को सदा विजयी समझते हो आप, जो है विश्व पर विजय बन राज्य करने वाली अधिकारी आत्मा हो, तो विश्व पर राज्य करने से पहले स्वयं पर विजयी बने हो। स्वयं पर विजयी बनना अर्थात सर्व अधिकार प्राप्त करना दूसरा पॉइंट है। तो सर्व अधिकार किन चीजों में प्राप्त करनी है? आत्मा की मुख्य 3 शक्तियां है मन बुद्धि संस्कार। तो अपनी मन बुद्धि संस्कार पर हमने कहां तक विजय प्राप्त की है, कहां तक सर्व अधिकार प्राप्त किए हैं? और जब तक हम इन मन बुद्धि संस्कार 3 पर सर्व अधिकार प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम अपने मन बुद्धि संस्कार को जब चाहें जहां चाहें जिस स्थिति में चाहें चेंज नहीं कर सकते। और जब तक अपनी स्थिति को हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं या उन आत्माओं के जिन्हों की हमने सर्विस की है उनकी स्थिति को हम चेंज नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट है पुरुषार्थ की सिद्धि। तो बाबा ने पूछा है कि अपने को अभी पुरुषार्थी समझते हो या सिद्धि स्वरूप भी बन गए हो, या अभी ऐसा समझते हैं कि संगम युग है तो सिर्फ पुरुषार्थी हैं, सिद्धि तो भविष्य में मिलना है। तो बाबा ने कहा है कि अभी आपको पुरुषार्थी और सिद्धि स्वरूप दोनों बनने हैं। एक मुरली है बाबा की, मैं संडे में आई थी पिछले संडे से, जिसमें बाबा ने कहा था कि जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप जो है जैसा है उस रूप में जान लेने से सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार आप अपने को स्वयं जो हो जैसे हो अगर उसको भी जान लिए तो उसमें भी सर्व सिद्धियों की प्राप्ति है। तो इसमें हमारे मुख्य जो 3 संस्कार हैं मन बुद्धि और संस्कार, इन 3 के ऊपर हम जब तक विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम सिद्धियों से दूर रहेंगे। और चौथी पॉइंट है सर्विस। बाबा ने पूछा है और बताया है कि सर्विस ही आपकी स्थिति का आईना है। तो अपने को चेक करना है कि जैसी स्थिति हमारी है, जिस शक्ति स्वरूप की स्थिति हमारी है,
वैसी शक्ति स्वरूप की स्थिति उन आत्माओं की है जिन्हों की हमने सेवा की है या जिन्हों के हमने ज्ञान दिया है। अन्य आत्माएं जो हमारे जीवन से, हमारे संयोग से, हमारे स्नेह से प्रभावित होती हैं, लेकिन क्या उन आत्माओं की स्थिति भी हमारी जैसी शक्ति स्वरूप बनी है? तो आईना हमारा सर्विस है और सर्विस के आधार पर ही हम अपनी संपन्नता के स्टेज को देख सकते हैं। और पांचों पॉइंट है विशेष गुण। तो बाबा ने बताया है कि मेजॉरिटी सभी ब्राह्मण आत्माओं में दो विशेष गुण जो हैं उसमें सभी पास हैं, मेजॉरिटी पास है। तो दो विशेष गुण है वो प्योरिटी और स्नेह है, उसमें सभी पास है मेजॉरिटी। लेकिन जो स्थिति शक्ति स्वरूप की हमारी बनी है, जो संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वो हमारे जीवन से प्रभावित हो गई हैं, हमारे स्नेह से प्रभावित हुई हैं, हमारे संयोग से प्रभावित हुई हैं, लेकिन जो वास्तव में जो नॉलेज है और नॉलेज फुल बाप है, मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे हम और सर्वशक्तिवान बाप की विशेष कर्तव्य का जो रूप है उससे प्रभावित हुए हैं, बाबा ने प्रश्न पूछा है। तो इसमें बाबा ने बताया कि हमारे जीवन से प्रभावित होना और हमारे स्नेह से, हमारे संयोग से प्रभावित होना तो बाप के विशेष कर्तव्य का जो रूप है उसकी तुलना में कम है अभी। और छठा पॉइंट है शक्ति अवतार। बाबा ने कहा है कि शक्ति अवतार का नाम बाला होना है। नॉलेज फुल बाप, मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे और मास्टर सर्वशक्तिमान बाप, इनसे प्रभावित हुए हैं जो जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उन आत्माओं की। जैसा उसमें बाबा ने कहा है कि इस जो हमारे स्नेह और सहयोग है उससे तो आत्माएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन जैसी स्थिति हमारी बनी है अभी पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करके, जब तक जो हमारी स्थिति बनी है वही स्थिति क्या उन आत्माओं की भी बनी है? और जब तक वो स्थिति उनकी नहीं बनेगी तब तक हमारी सर्विस अधूरी रहेगी। और सातवां पॉइंट है झंडा लहराओ। इसमें बाबा ने बताया है कि जैसे ऊंची स्थान पर झंडा लहराते हैं तो ऑटोमेटिक सबको दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार हमारी स्थिति का झंडा हमारे जीवन से प्रभावित हो रहे हैं, हमारे स्नेह से प्रभावित हो रहे हैं, हमारे संयोग से तो प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हमारा शक्ति रूप का झंडा जो है ऐसा फहराना है कि सर्व आत्माएं हमारे शक्ति रूप से प्रभावित होए और स्वयं शक्ति रूप भी बन जाए। ओम शांति। तो पहला पॉइंट है सदा विजयी, और दूसरा पॉइंट है सर्व अधिकार, तीसरा पॉइंट है पुरुषार्थ की सिद्धि, चौथा पॉइंट है सर्विस, पांचवा पॉइंट है विशेष गुण, छठा पॉइंट है शक्ति अवतार, और सातवां पॉइंट है झंडा लहरा। ओम शांति।